ओम शांति। आप सभी बट्टी में आए हैं ना? आप अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं? भाग्यशाली समझते हैं, महान सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में, इस राह पर, इस यात्रा पर जो बट्टियां होती है वो एक हमारा इस आध्यात्मिक जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। मैं इस शरीर का नाम बालकृष्ण भाई है, तो मैं 1985 से इस ज्ञान में हूँ, कर्नाटक से हूँ। तो 33 साल से मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल में फार्मेसी में सेवा करता हूँ। तो ये मेरा अनुभव कहता है, हमारा जीवन में परिवर्तन हुआ है तो बट्टी के आधार से ही, क्योंकि बट्टी में ही आप सभी को, हम सभी को समय मिलता है अपने आप को देखने के लिए। जैसे कोई कार होता है, कोई गाड़ी होती है, कोई भी गाड़ी हो, व्हीकल हो, तो उसको साल में एक बार सर्विसिंग कराते हैं। सर्विस करने से पता लगता है कौन सी टायर खराब है, कौन सी डोर खराब है, इंजन में कहाँ खराब है। वर्कशॉप में लेके जाएंगे तो पता लगता है, वो रिपेयर करता है, वो हमको सारा साल सुख देता है गाड़ी। ऐसे ही हमारा इस आध्यात्मिक जीवन में, ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन ही हमारा आधार है। सतयुग और इस कलयुग का अंतर क्या है? वहां पर भी दो पैर मनुष्य होता है, यहां पर भी दो पैर मनुष्य होते हैं, है ना? वहां भी इंसान, लेकिन गुणों में, संस्कारों में रात दिन का अंतर है ना? तो वो हम लोगों को अपने आप को देखना है, मेरे अंदर क्या कमी है, क्यों मेरे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, पुराने संस्कार, क्यों मैं अभी तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर रहा हूं, इसका सबका उत्तर बट्टी में मिल जाता है। अगर आप 3 दिन जो भी बट्टी है, अगर आप लक्ष्य लेकर के अपने आप को देखेंगे तो पता लगता है हमारे आत्मा के अंदर क्या कमी है। रियलाइजेशन का समय ये बट्टी है। जैसे कोई भी बीमारी होती है, आजकल हॉस्पिटल्स इतना, टेक्नोलॉजी साइंस इतना इंप्रूव हो चुका है, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई कराते हैं, उसमें पता लग जाता है सूक्ष्म रीति से भी हमारा शरीर में कोई भी डिफेक्ट है वो बता देता है। ऐसे ही आप लोग सभी आए हैं, तो अभी समय बहुत कम है, आप सभी जानते हैं। क्या लगता है कि बहुत साल चलेगा, ऐसा है नहीं, बहुत समय थोड़ा है। तो ये थोड़े समय में हम मंजिल प्राप्त करना है और इस समय को सफल करना है, इस ब्राह्मण जीवन को सफल करना है, तो अभी जो आप आए हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब यहां से कुछ प्रतिज्ञा करके जाइए। हर एक आत्मा, हर एक व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह जानता है, मेरे अंदर कमी क्या है, दूसरों से भी स्वयं जानते हैं, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो अभी भट्टी में आए हैं तो इसको अच्छी रीति देखना है। तो हमारा जीवन का कुछ थर्मामीटर्स है, जैसे मेडिकल में हर एक चीज पहचानने के लिए मीटर होता है, आप सभी जानते हैं। जैसा शुगर टेस्ट करने के लिए ग्लूकोमीटर बोलते हैं, बीपी चेक करने के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और ऐसा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है तो वो पहचान लेता है। ऐसे ही आप अपने आप को पूछिए, क्या मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहा हूं? क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद अगर हमारा जीवन में हमने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं है। हमने भगवान को पहचान लिया, भगवान से बाबा से मैंने बात नहीं किया, हम कई बार सिर्फ अम्मी बात करते रहते हैं, लेकिन बाबा जो कहता है क्या मेरे को सुनाई देता है? जैसे बाबा से रूढ़िहान करना, जैसे आप तो बता रहे हो बाबा ऐसा है ये है, चार्ट सुना रहे हो बाबा को, क्या बाबा से आपको रेस्पॉन्ड मिल रहा है, महसूस करते हो? क्योंकि हम कहते हैं भगवान हमारा साथी है, कहते हैं ना बाबा मेरा फ्रेंड है, सर्व संबंधों से याद करने की हम कोशिश करते हैं। क्या सच्ची दिल से खास अमृत वेले बाबा से हम ऐसे रूढ़िहान करते हैं, या सिर्फ आप ही बोल रहे हो बाबा की आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, या आप कोई बात पूछ रहे हो, जैसे कि आपका कोई टीचर है, आपका पिताजी है, पिताजी ऐसे ऐसे हुआ तो पिताजी उत्तर देंगे, बच्चे ऐसा करो, ये हॉस्पिटल में जाओ, ये डॉक्टर को दिखाओ, ऐसे ही बाबा से आपको महसूस हो रहा है? ये दूसरी प्रश्न, फर्स्ट है अतीन्द्रिय सुख, दूसरा है बाबा से ऐसे रूढ़िहान करो कि बाबा आपको कहे बच्चे ये है। तीसरी बात है, क्या मेरा इस ब्राह्मण जीवन टकराव मुक्त है, लगाव मुक्त है, जुखाव मुक्त है? ये चेक करो। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में अगर सचमुच हम बाबा के साथ रूढ़िहान करते हैं, दिल से हम बाबा का मर्यादाओं का पालन करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, बाबा जरूर मदद करेगा 100%। हमने जीवन में बहुत ऐसा अनुभव किया है, बाबा ने हर व्यक्ति को अनुभव कराता है उनका पुरुषार्थ के अनुसार। एक छोटी सी घटना सुना देता हूं कि मुझे याद आ रहा है कैसे बाबा हमको मदद करता है। तो ये 1991 में हॉस्पिटल शुरू हुआ, मैं 1992 में आ गया था, फिर मेरे को चोट लग गई थी, फिर मैं घर गया, फिर 93 में मैं आ गया। दो तीन साल के बाद मेरे सामने बहुत बड़ी परीक्षा आई, क्योंकि एक बिजनेस, एक ये जैसे हम परिवार वाले बैठे हैं इसलिए मैं सुना रहा हूं, कैसे बाबा रक्षा करता है, कैसे बाबा आपको बताता है, टचिंग कराता है, बच्चे ये करो, ये डिपेंड करता है आपका और बाबा का साथ का जो कनेक्शन है वो, उसके आधार पर बाबा आपको टचिंग कराता है। तो एक बार हॉस्पिटल में कुछ अकाउंट की बात चल रही थी, कुछ ऊपर नीचे हो गया था, कंप्यूटर में दिखा रहा था, तो वही ऑडिटर लोग मान रहे थे कि भाई ये कैसे हुआ। तो ब्राह्मण परिवार में कोई, वो भी संगठन में, किसी के ऊपर दाग लग जाता है तो पुरुषार्थ में बहुत बड़ा विघ्न हो जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है उस आत्मा को आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए बहुत संभाल के चलना पड़ता है। तो ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो गया था, तो कंप्यूटर में दिखा रहा था वो था नहीं, तो मैं ऐसा, तो फिर मीटिंग हुआ, उसमें सब लोगों ने बोल दिया, वो समय पर गुलजार दादी निमित्त थी ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए, निर्वेर बाय थे। गुलजार दादी को देखा है? कौन कौन देखा है? अच्छा, पुराने बैठे हैं, निर्वेर बाय थे। तो फिर मैं उसका उत्तर, तो वो लोग तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको छोड़ दो, लेकिन मेरा दिल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। अरे मैं कुछ क्या ही नहीं है, कैसे गलत हो गया? तो मैं रोज बाबा कमरे में आके मेरा आंग भर जाती थी, बाबा को सुनाता था। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरा दिन जैसे मैं बता रहा हूं बाबा को, 4:30 समय था, बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे ये जाके देखो, ये देखो, इसमें मिस्टेक हुआ होगा। तो मैं तुरंत उठा, अमृतवेले के बाद दोबारा मैं स्नान करता हूं, लेकिन उस दिन सीधा हमारा फार्मेसी खोला, चेक किया, तो वो उत्तर मिल गया। तो इतना खुशी हुई, बाद में मैं सवेरे सवेरे प्रिंट आउट सारा निकाल के निर्वेर भाई को दिखाया। तो कहने का भावार्थ, जब हम दिल से बाबा को याद करते हैं या दिल से बाबा के साथ सच्चाई सफाई से रहते हैं तो बाबा जरूर मदद करता है। तो आज भी वरदान क्या था, वरदान क्या था आज का? रुहाब और रहम। जो हमारा जीवन में, जैसे मैंने कहा कि आपका जीवन टकराव मुक्त हो, सदा खुशी हो, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपको दुख फील हो रहा है, दुख का फीलिंग है, तो उसका अर्थ क्या है? दुख का फीलिंग है तो उसका अर्थ यह है, बाबा ने कहा, कहीं ना कहीं विकार का अंश है। अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी आपको वो कुछ ही नहीं है, वो नशा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, तो उसको पहचानना है। तो बाबा ने कहा रहम दिल। रहम किसके प्रति करना है? पहले स्वयं के प्रति रहम करना है। जो बाबा ज्ञान दे रहा है, क्या उसको मैं कहां तक धारण किया हूं? क्योंकि जब तक चेकिंग नहीं होगी तो चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे रात को सोते वक्त बाबा को दिन का पूरा चार्ट सुनाओ, तो आपको पता लगता है कि मैं सुबह से शाम तक कहां कहां मैंने मिस्टेक किया हूं, कहां कहां मर्यादा का उल्लंघन किया हूं, क्योंकि आप देखेंगे नहीं हैं, आप सारा दिन कार्य व्यवहार में व्यस्त रहते हो, तो चेकिंग नहीं होगा तो चेंज भी नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो बाबा के प्रति वो जो खुशी, वो आनंद तभी मिलता है जब हम दिलवा जान लगाकर पुरुषार्थ करते हैं। तो रोज बाबा को, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे एकांत में अपने आप से बातें करो। क्या बात करना है, क्या बात करना है, यही बात करना है। अगर किसी से, क्योंकि हम 63 जन्म हिसाब किताब बना के आए हैं, आप जिस घर में रहते हो, जिस स्थान में रहते हो, जिसके साथ रहते हो, तो उसका कारण कौन है? आप ही है। आपके कर्म के हिसाब किताब के अनुसार ही आप उस घर में जन्म लिए हो। आप वो आपकी पत्नी बनी है, वो आपका पति बना है, वो आपका बेटा बना है, वो आपका बहू बनी है, हिसाब किताब के कारण ही। तो ये सदा स्मृति रहना चाहिए, ये अंतिम समय है, मुझे हिसाब किताब चुक करना है, मुझे कोई भी किसी से दुख मिल रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं या आपको परेशानी हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, क्या कारण है? आप राइट किए हैं, आप सही है, लेकिन आपके ऊपर आरोप है, आपको टांग खींचने वाले बहुत है, आपको इंसल्ट करने वाले हैं, आपको परेशानी करने वाले आपके घर में ही है, तो क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हम उस आत्मा को दुख दिया है। तो अभी मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि उसको सहन करना है, उस आत्मा को शुभ भावना, रहम की भावना रखनी है। अगर रहम है तो उसको पार करना सहज है। हाई सिंपल ज्ञान, ये कोई बड़ी ज्ञान नहीं है, बाबा का नॉलेज बहुत सिंपल है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाने की तरीका समझ में आना चाहिए। रोज बाबा सुनाता है कि बच्चे ऐसा रहना है। हम कई बार आवेश में आ जाते हैं, कई बार हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो हम रिवर्स हो जाते हैं, वो जैसे सुनाया हम भी सुना दिया, वो कोई मेरे बारे में कंप्लेंट किया, बड़ों लोगों ने मान लिया, फिर आपको आवेश आ जाएगा, अरे मैंने किया ही नहीं है, सब बोल दिया। आपका घर में 3 बेटे हैं, तीनों को एक जैसा पालना दिया है, 2 बेटे आपकी बात सुनेंगे, एक बात नहीं सुनेगा, परेशान करेगा। तो उस समय पर परिवार में रहते हुए हमारा जीवन टकराव मुक्त हो, तो उसके लिए विशेष अमृत वेले का अभ्यास। रोज आप अमृत वेले विशेष ये अभ्यास कीजिए, जिस आत्मा के साथ आपका बार बार टकराव हो रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके प्रति भावना नहीं है, तो आप एक बार अमृत वेले विशेष बाबा को सामने रखते हुए ओम शांति भवन में बुला लीजिए, सबके सामने क्षमा मांगना है, स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म से आप ओम शांति भवन पहुंच जाइए, सारा ब्राह्मण परिवार है, आप करके देखिए कितना हल्का महसूस होगा और उस आत्मा के अंदर परिवर्तन होगा। ये जो छोटी छोटी योग का प्रयोग जो है ना, वो जरूर करना चाहिए, तो हमारा जीवन में एक उमंग उत्साह बना रहेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जीवन टकराव मुक्त हो। इसके लिए जैसा बाबा ने कहा, रहम करो, पहले अपने को आपको देखो, क्या मेरे अंदर ऐसा संस्कार जो है, जो चिड़चिड़ापन है, आवेश में आते हैं, क्यों, कारण क्या है, उसको समझाना है। क्योंकि आप लोग बट्टी में आए हो, अभी ये जो कमियों का मिटाने का रियलाइजेशन जो है अभी आप कर सकते हो, उसे कितना नुकसान है उसके गहराई में जाइए, चिंतन कीजिए, क्या करेंगे तो यह संस्कार मेरा ठीक होगा। बाबा ने पूरा ज्ञान दिया है, क्या अभ्यास करना है, उस आत्मा को कैसे क्षमा करना है, तो हमारा किसी आत्मा के साथ पुराना कोई भी हिसाब किताब है उसको चुप करना, ना कि बढ़ाना है। हम यहां पर आए हैं तपस्या करने लिए, हमारा पुराना विकर्म विनाश करने के लिए, नया कर्ज लेने के लिए नहीं आए हैं, है ना, पुराना हिसाब चुक करने के लिए। तो किसी भी कारण से नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। तो रोज सभी अमृत वेले घर में उठते हैं, रेगुलर, एक दिन भी मिस नहीं है, वो हाथ उठाइए नहीं, क्योंकि अभी आप लोग अभी आए हो ना, यहां पर प्रतिज्ञा करके जाना, इधर जो भी प्रतिज्ञा करेंगे ना वो सफल हो जाता है। क्यों, कारण क्या है, जैसे बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रॉपर प्लग नहीं डालेंगे तो चार्ज नहीं होगा, ऐसे ही यहां पर जो है प्रॉपर जगह है, वो भी भट्टी में आए हो, ये आप लोगों को गोल्डन चांस है। तो यहां पर एक दृढ़ प्रतिज्ञा करके जाइए, कुछ भी हो जाए, भले बीमार है, भले आप सारा दिन रेस्ट नहीं किया हो, कुछ भी हो, लेकिन जरूर उठना, पहले ये अभ्यास करो। विश्वरतन दादा हमेशा कहते थे कि वो तीन चार बात ही बोलते थे, इतने वो मेरे से बहुत नजदीक थे, क्योंकि मैं रोज उनको मेडिसिन देने के लिए आता था, उनके साथ बातचीत करता था, ऑलमोस्ट हाल जब थे तो रोज मुलाकात होती थी। तो बहुत सिंपल बोलते थे, रेगुलर, पंचुअल, सिंसियर, एक्यूरेट। कोई भी चीज हो इस ब्राह्मण जीवन में, रेगुलर होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए, सिंसियर मतलब ध्यान से, प्यार से, एक्यूरेट करते जाओ तो सफलता है। और उनका विशेष और एक बात थी, बाबा मुझे देख रहा है, और कुछ नहीं बोलते थे, हमेशा की स्मृति में रखो, बाबा साथ में खड़ा है, बाबा मुझे देख रहा है। देखिए बहुत सिंपल बात है, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देखना, कई चीजें ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। जैसे किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प आ रहा है, नहीं, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे, मेरे को जानता है, नहीं, मेरे को ऐसा संकल्प नहीं करना है, बाबा मेरे को देख रहा है, मुझे ऐसा शब्द नहीं बोलना है, ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाता है। तो जो रहम दिल सारे संसार में आज की डेट में जो भी झगड़ा हो रहा है, कारण क्या है, रहम नहीं। और दूसरा, रुहाब के बजाय क्या है, एक ही अक्षर अंतर है, रोब है, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। रुहाब और रोब थोड़ा अंतर है। रुहाब क्या है, रुहाब क्या है, इंटॉक्सिकेशन, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, एक नशा, रुहाब, उसमें देहाभिमान का अंश आ जाता है, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ठीक है, मैं इंचार्ज हूं, मैं जो बोलेंगे ऐसा है भाई, वही सही बोल रहा हूं, वो है रोब। थोड़ा अंतर है, इसी कारण से ही सारी हिसाब किताब बन जाता है। हम हिसाब किताब चूक करने लिए आए हैं, लेकिन हमारा व्यवहार में, बातचीत में दूसरों को दुख इसलिए पहुंचता है, हम एक जगह पर गलती कर देते हैं, कहीं ना कहीं हमारा अंदर देहाभिमान है, तो हमारा शब्द दूसरों को दुख पहुंचाता है। वहां पर रुहाब नहीं है, रोब है। तो इसलिए बाबा ने कहा, रहम और रुहाब से विश्व कल्याणकारी बन सकते हो। कितनी बड़ी टाइटल है विश्व कल्याणकारी। हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं, लेकिन अपना जहां आप रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिस सेवा केंद्र में रहते हो, जिस डिपार्टमेंट में रहते हो, वहां पर आप विश्व कल्याणकारी हो, वो चेक करने की बात है। कहीं ना कहीं हम वहां पर गलतियां कर देते हैं। हमारे अंदर क्षमा का गुण कम है, कारण शक्ति कम है। वो शक्ति प्राप्त होती है बाबा के साथ हमारा कनेक्शन अच्छा हो, हमारा योग अच्छा हो। अगर इस ब्राह्मण जीवन में आपको आगे बढ़ना है, तो एक बात जरूर रखना है, कभी भी जीवन में दिल शिकस्त नहीं होना है। दिल शिकस्त होने का कारण ही हम पुरुषार्थ में डीले हो जाते हैं। हम सच्चे दिल से बाबा को रोज चार्ट सुनाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बाबा आपका हर इच्छा को पूरा कर देते हैं। मैं 1984 में अगस्त बाबदा से 85 में बाबा से मिला। जब मैं मिला, मधुवन आया था, मेरा मन में एक तीव्र इच्छा हुई कि मेरे को मधुवन में रहना है। मैं क्यों सुना रहा हूं, बाबा हमारा इच्छाओं को कैसे पूरा करता है। हमारा परिवार में 28 लोग ज्ञान में चलते हैं, सब ज्ञान में चलते हैं, 8 लोग सरेंडर हैं, कोई अमेरिका में है, कोई दुबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई मैसूर में है, कोई शांतिवन में है, कोई मैं ही ग्लोबल में हूं। तो शुरू में 1985-86 में तो हमारा बिजनेस परिवार था, घर में बहुत मतलब बिजनेस विस्तार था, तो मेरे को मधुवन आना था, मधुवन में ही रहना है। उसी साल मैंने डिसाइड किया, पिताजी को बोला, पापा मेरे को मधुवन में रहना है। तो बोला, नहीं, आप इधर भी पुरुषार्थ कर सकते हो, मधुवन क्यों जाना है। जब हमारा दीदी लक्ष्मी बहन को मैंने कहा, दीदी मेरे को यहाँ रहना है, तो दीदी बोलती थी, आप जैसा कुमार को तैयार करो फिर आप जाओ, ऐसे बोलती थी। तो ऐसे ही पुरुषार्थ चल रहा था। मैं इसीलिए सुना, बाबा हम बच्चों का हर इच्छा को पूरा करता है। जैसे 1990 में हॉस्पिटल शुरू हुआ, 91 में मैं आया था, सेवा में था। तो उस समय पर आप लोगों को पता है, पुराने लोगों को दादी बहुत पिकनिक कराने लिए ले जाती थी। दादी का पालना तो बहुत अनमोल है, अविस्मरणीय है, उनकी पालना हर एक चीज था। तो गुरुवार का दिन हॉस्पिटल का छुट्टी था, तो मेरे को पीस पार्क सब जगह लेके गए थे। तो मैं, हम लोग यहाँ हॉस्पिटल के नजदीक एक जगह ग्राउंड था, वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए हम गए। तो मधुवन वाले वर्सेस ग्लोबल हॉस्पिटल क्रिकेट मैच चल रहा था, छुट्टी का दिन था, दादी लेके गई थी। मैं साउथ इंडिया से आने के कारण मैं यहाँ का जो रोटी थेपला पसंद हम खाते नहीं थे, तो मेरे को शुरुआत में फूड भी सेट नहीं होता, मैंने नाश्ता नहीं किया था, ऐसे ही खेलने लिए गया था। खेलते वो लेदर बॉल था, हेलमेट तो था नहीं या पैड था, क्रिकेट खेलने वाले होंगे थोड़े कुछ लोग जानते होंगे, वो लेदर बॉल सीधा मेरे आंख के ऊपर गिर गया। आंख के ऊपर गिर तो चश्मा टूट गया, कांच पीस पीस हो गया, आंख के अंदर कांच का पीस चले गया। उस समय पर हॉस्पिटल नया था, कोई आंख का डॉक्टर नहीं थे। जैसा आंख होता है ना, एक मक्खन जैसा होता है, कोई भी चीज अंदर चले जाता है इजीली, तो पहचान में नहीं आया वहां जो भी डॉक्टर थे। तो बोला सेवादारी में था, सेवादारी उनके प्रति ऑटोमेटिकली थोड़ा अटेंशन कम रहता, बोला कि अब जाओ रेस्ट करो। तो मैं हॉस्पिटल वापस आ रहा था ग्राउंड से चल के, तो वहां उस समय पर एक डॉक्टर आनंदन करके थे, वो सर्जन थे, जनरल सर्जन। तो उन्होंने देखा, कहा कि बालकृष्ण भाई आपका जो अंदर प्यूपिल है वो काम नहीं कर रहा है, आपको तुरंत अहमदाबाद जाना। उस समय पर अहमदाबाद जाना बोले तो 6-7 घंटे का जर्नी होता है, सिंगल रोड था। तो फिर मैंने सोचा मेरे को कौन लेके जाएगा। तो ऐसा उनसे डॉक्टर से कुछ नहीं बोला, मैं बाबा के कमरे में, बाबा के पास सब कुछ बाबा को सौंप दिया। देखिए बाबा कैसे करता है रक्षा। जैसे मैं बाबा के कमरे से बाहर आया तो मेन गेट में जो काउंटर के पास बड़ी दादी आई थी। बड़ी दादी मेरे को नाम सहित नहीं जानती थी, लेकिन ये जानती थी ये पुराना कुमार है। तो मेरे को देखा, दादी ने क्या हुआ, तो मैंने दादी को बताया कि दादी ऐसा ऐसा हुआ। तुरंत दादी ने लैंडलाइन फोन उठाया और प्रताप भाई को कहा कि इनको अभी तुरंत अहमदाबाद ले जाओ, इनको चोट लगी है। तो मैंने कुछ खाया नहीं था, मेरे साथ उस समय पर बनारसी भाई और डॉक्टर महेश करके कर्नाटक का डॉक्टर है, वो दोनों मेरे साथ आए। तो मेरे को अहमदाबाद लेके गए। तो पहुंचते पहुंचते रात 8 बज गया, क्योंकि वो लोग रास्ते में भोजन किया, थोड़ा रिफ्रेश हुए, वहां पहुंचते पहुंचे 8 बज गया। जैसे वहां का आंख का डॉक्टर मेरे को देखा, क्योंकि मेसाने में ये लोग भोजन किया, मैंने भोजन नहीं किया, मैंने कहा मेरे को इच्छा नहीं लग, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस समय पर वो सेंटर का दीदी ने एक प्लेट में फ्रूट्स कट करके लेके आई दी। तो जैसे दीदी गई तो मैंने उसको एक पॉलीथिन में डाल के साइड में रख दिया, फिर मैंने खाया नहीं। जब वहां डॉक्टर देखा तो बोला आई एम वेरी सॉरी। मैंने पूछा क्यों सर, तो कहते हैं कि देखो इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, आपका आंख के अंदर कांच का पीस इन्फेक्शन हो गया है, अभी जनरल एनेस्थीसिया देना, आपको ऑपरेशन करना है, लेकिन आप खाली पेट में तो है नहीं, 6 घंटा खाली पेट में रहना, सवेरे तक वो इन्फेक्शन बहुत फैल जाएगा, तो करने से भी कोई फायदा नहीं, आंख निकाल के प्लास्टिक बॉल डालना है। मैंने बोला वैसा मैंने कुछ खाया नहीं सवेरे से। तुमको आश्चर्य हो गया, कुछ खाया नहीं सवेरे से, किसने कहा था आपको नहीं खाने के लिए। मैंने बोला नहीं, मेरा मन में कहा कि नहीं खाना। तो पहले मेरे गले लगाया, तुरंत ऑपरेशन थिएटर लेके गए, ऑपरेशन किया, 3 कांच का पीस निकाला, सक्सेस। तो ये सारा किसका खेल है। तो हम जब बाबा को दिल से हर एक चीज बताते हैं, बाबा के साथ सच्चाई सफाई है, बाबा के हर श्रीमत को हम फॉलो करने लिए कोशिश करते हैं, आप उस राह पर चलेंगे बाबा मददगार बन जाता है। तो जब मैंने ये कहानी घर में बताया तो वो लोग भी छुट्टी दे दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि बाबा आप ये आंख दिया है, ये शरीर आपकी सेवा में ही रहेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उस समय से मैं मधुबन में सरेंडर समर्पित रूप से सेवा दे रहा हूं। तो इतने सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा बाबा का कनेक्शन है, आपका हर समस्या का हल हो जाएगा। तो क्योंकि ऐसे यहां पर कोई है कहेंगे कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं है, विघ्न नहीं है, ऐसा कोई है? हर एक व्यक्ति के सामने है ना। तो उसको पार करने के लिए हमारा पुरुषार्थ अच्छा है, हमारा पुरुषार्थ ठीक है,
तो ऑटोमेटिकली सब समस्या दूर हो जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना, रोज रात को अपने आप को देखना, चार्ट सुनाना, क्योंकि बाबा कई मूल्यों में कहा है कि बच्चे जो चार्ट लिखते हैं, जो चार्ट नहीं भी लिखे, कम से कम बाबा को सुबह से शाम तक जो भी हुआ है वो सुनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे दिन में हमारा गलती हो चुके रहते हैं, फिर उसी कारण से आपको उस कमी को महसूस कर परिवर्तन कर सकते हैं। और आपके हर कार्य में, जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे जितना बाबा के साथ आपका कनेक्शन है उतना ही आपका हर कार्य सफल होगा, हर कार्य सफल होगा। हम अभी यही करना है, हमारा सब कुछ बाबा के लिए, अग्नि के लिए सफल करना है। तो हमारा एक तो मेन हमारा कमी को महसूस करना, कमी को महसूस करने के बाद उसके बारे में चिंतन करना, क्योंकि हम तभी गलती करते हैं हमारा जीवन में। कब गलती करते हैं, गलती कब होती है, संकल्पों से होता है, बोल से होता है, कर्म से होता है। संकल्प में गलती क्यों होती है, मान लीजिए आपको कोई उल्टा सुल्टा सुना दिया, क्या होगा, घर में आपका बेटा बात नहीं सुना फिर भी आपको आपके ऊपर ही झगड़ा कर रहा है, ये होता है नहीं होता है, परिवार में आपके प्रति भावना नहीं है। लेकिन अगर आपका अमृत वेले पावरफुल है, अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपका अंदर वो एनर्जी आएगा, आप उस समय पर शांत रहेंगे, आपके अंदर शक्ति नहीं है, क्षमा का गुण नहीं है, तो आप उस आत्मा को क्षमा कर ही नहीं सकते, आपके अंदर नेगेटिव संकल्प चलेगा, उस आत्मा के प्रति आप उल्टा सुल्टा सोचेंगे बोलेंगे। तो यहां पर अभी भट्टी में आए हो तो पहले हर आत्मा का अपना अपना कमी होती है, सबका एक जैसा नहीं होता है, तो अपना पहले कोई ना कोई ऐसी कमी है जो आप अभी तक भी उसको पालना देते आए हो, उसको समाप्त करो, क्योंकि आप सभी पुराने होंगे, कोई 5 साल 10 साल 15 साल से ज्ञान में है, लेकिन पहले हमारा परिवर्तन का मेन रुकावट क्या है वो पहचानो, उसको मिटाने के लिए पुरुषार्थ करो। जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा परिवर्तन नहीं होगा। रियलाइजेशन होने के बाद क्या करना है, पहला स्टेप है रियलाइजेशन, दिल से रियलाइज, मतलब जस्ट नॉलेज में, हाँ मेरे को, हाँ मैं बाहर कभी कभी खा लेता हूं, या मेरे को गुस्सा थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, ये इंफॉर्मेशन है, महसूस मना, उससे क्या नुकसान हो रहा है दिल में आपको फील हो, तब आपको बाबा को सवेरे विशेष उसको सौंप करके बाबा से वो शक्ति लेना है। जैसे आपके अंदर चिड़चिड़ापन का संस्कार है तो चिंतन करो इसको कैसे करना है, क्योंकि हमारा जो आप लोगों को मालूम हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहते हैं 1985 में एक अनाउंसमेंट किया, पता है क्या अनाउंस किया, बीमारियों का कारण किसी को मालूम है, किसी को पता है 1985 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अनाउंसमेंट किया, 85% आर साइकोसोमैटिक डिजीजेस। इसका अर्थ क्या है, जो हमारा मनोविचार के आधार से ही कोई भी बीमारी आती है, 85% बीमारी। तो इसलिए अभी रिसेंट एक रिसर्च किया है जो अमेरिका के डॉक्टर्स लोगों ने, तो रोज डोज लेना है। डोज का मीनिंग आप लोग कोई सुना है इसके बारे में? नहीं सुना है ना? तो डोज कहते हैं, डोज मतलब डी मतलब डोपामिन। डोपामिन एक केमिकल है, वो हमारा शरीर में क्रिएट होता है। डोपामिन कब क्रिएट होता है? जब आप बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, दिल से रूहान करेंगे, दिल से सेवा करेंगे। आप देखना, जैसे खूब आप सेवा कर रहे हो बाबा की याद में, तब आपके बॉडी में एक एनर्जी क्रिएट होता है। जब बाबा से बहुत प्यार से रूहान कर रहे हो, जब आपका अंग भर जाता है, दिल की बात सुना रहे हो, तो तब हमारा शरीर में डोपामिन क्रिएट होता है, उसको डी बोलते हैं। डोपामिन जितना रिलीज होगा उतना आप एनर्जेटिक बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। ये पॉजिटिव एक केमिकल है, आपका सारा बॉडी का पैरामीटर्स ठीक रखता है। हमारा जीवन में उदासी इसलिए है, इसलिए उदास है, आपका जीवन में अतीन्द्रिय सुख नहीं है, हम साधारण रीति से चल रहे हैं। दूसरा है ऑक्सीटोसिन। जैसे बाबा ने आज कहा कि हमारा जीवन में रहम होना चाहिए। अब कोई भी काम करो, कोई भी सेवा करो, प्यार से करो। घर में खाना बना रहे हो, बाबा मेरे को ये परिवार को देखभाल करने के लिए निमित्त रखा है, प्यार से खाना बनाओ। देखो वो खाने का इफेक्ट कितना होता है, वो ऑक्सीटोसिन क्रिएट होता है। दीदी ने सेंटर में कोई सेवा दी, प्यार से करो, आप दिल से करो, तो ऑक्सीटोसिन क्रिएट होता है। यस बोले तो सेरोटोनिन, और होता है ई बोले तो एंडोर्फिन। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, तो तब हमारा पिट्यूटरी या जो वहां पर हाइपोथैलेमस के पीछे जो एक एंडोर्फिन करके एक केमिकल रिलीज होता है। आप जानते होंगे डॉक्टर सपन गुप्ता को, सपन गुप्ता को जानते हैं आप लोग? ओ, उन्होंने सारी बताया मेरे को, हमारे क्लास में सुनाए, वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं कि डोज मतलब हमारा जीवन में ये बाबा का जो श्रीमत है ना, वो पूरा 100% साइंटिफिक है। तो अगर बाबा का श्रीमत को आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए आप अमृत वेले नहीं उठा, बाबा कहते क्या कहते हैं अमृत वेले नहीं उठे तो क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफ कास्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण ही नहीं कहलाएंगे, ऑफ कास्ट ब्राह्मण कहते हैं। तो अगर आप ये मेन हमारा फाउंडेशन है, तो ये यहां से आप प्रतिज्ञा करके चाहिए, कुछ भी हो जाए 30 मिनट्स प्यार से बाबा को याद करने का अभ्यास कीजिए। नहीं हो रहा है आपको 3 बजे उठने के लिए, नहीं हो रहा है 2:30 बजे, कोई बात नहीं है, लेकिन अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़ना है। तो यहां से खास आप लोग ये करके जान। दूसरी बात, अभी समय थोड़ा रहने के कारण बाबा ने कहा है कि बच्चे अगर आप अंतिम समय में पश्चाताप का क्यों में नहीं कड़े होना है, पसंद करते हैं ना आप लोग, क्योंकि अंतिम समय में 2 क्यों कड़े होंगे, एक है पश्चाताप का क्यों और एक है वाह का क्यों। अगर आप अभी दिल से पुरुषार्थ नहीं किया, दिल से सेवा नहीं किया, आपका पास जो खजाना है, समय की खजाना, संकल्प की खजाना, स्थूल खजाना, कुछ भी हो, अगर आप सफल नहीं किया, तो अंतिम समय में पश्चात आपका क्यों में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं समय और संकल्प कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा जो कारण है, हमारा दुख का कारण है, हमारा योग नहीं लगने का कारण है व्यर्थ। तो आपका चार्ट ऐसा बनाओ सुबह से शाम तक फुल बिजी हो। बाबा कहते हैं जो बिजी मैन होते हैं ना, उनके पास माया नहीं आती है। व्यर्थ, ये व्यर्थ जो है बहुत बड़ी बीमारी है। हमने व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ समय गंवाना, तो हमारा शक्ति ड्रेनेज हो जाता है। तो हरेक आत्मा को, हरेक व्यक्ति को अपने आप ऐसा एक चार्ट बनाओ कि मेरा कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो। ये आपके हाथ में है, कोई कितना भी कहे वो नहीं। आपको अभी ये करना है, मैं कहां खड़ा हूं इस संगम पर, पुरुषार्थ के मार्ग में कहां खड़ा हूं, हर एक व्यक्ति को चेक करने का बहुत जरूरी है। नहीं तो हम जानते हुए, बाबा का परिचय मिलते हुए, हम अंतिम समय में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए अभी आप लोग आए हो तो ये काम जरूर करना है कि अपना एक व्यक्तिगत यहां से एक सिद्धांत बना के जाइए, पर्सनल। जैसे मैंने कहा कि कोई कमी को छोड़ने के लिए, ऐसे ही आप यहां से एक भट्टी अभी खत्म नहीं हुई है, आप लोग जब घर पहुंचेंगे तब भट्टी शुरू होगा। ऐसा आप एक प्लान बना के जाइए, आपका समय सफल होने के लिए, आपका एनर्जी सफल होने के लिए, यहां आप लोग जो आए हैं उसको सफल करने के लिए, थोड़ा अपने आप को एकांत में बाबा से बात कीजिए। क्या मेरे से बाबा चाहता है, मुझे बाबा कैसे देखना चाहते हैं? देखिए ये तीन चार बातों को अगर ध्यान में रखेंगे, आपका जीवन अहोस सौभाग्य हो जाएगा। इस ब्राह्मण जीवन में अधिक तरफ वर्तमान समय सबसे बड़ी समस्या जो है सभी को, अधिक तरफ मैं देख रहा हूं, जब मैं 1992 में हॉस्पिटल में आया था, 93 में एक बार मुझे संकल्प आया था, रे मैं यहां ब्राह्मणों का सेवा करने लिए आया, हमारा हॉस्पिटल में दो ही बीके भाई बहन एडमिट है, बाकी सब घरासिया लोग एडमिट है, क्या इनकी सेवा करो, ऐसा संकल्प आया था मेरे। आज का डेट में आप किसी को भी देखिए, बीमारी पेशेंट से। कारण क्या है, अभी हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है और दवाइयों में बहुत अच्छे अच्छे दवाई आ चुका है, लेकिन बीमारियां क्यों कम नहीं हो रही है? कोई है उत्तर? कारण क्या है दीदी, बताइए कारण क्या है? क्योंकि समय कम है, बाबा सभी का हिसाब किताब को चुप करना है, तो इसीलिए सबका हिसाब किताब फास्ट गति से चल रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि बाबा ने कहा शारीरिक बीमारी, ऐसी बीमारियां अभी बढ़ते जा रही है। पहले हमारे पास नींद की गोली बहुत कम सेल होता था, अभी इतना बिक्री हो रही है, इतना लोग लेके जाते हैं कि नींद नहीं आती है। ये सभी अंतिम समय का निशानी है। इसलिए आप लोग भट्टी में आए हो तो यहां पर कुछ विशेष यादगार बना करके जान अपने जीवन के लिए, है ना? अच्छा, ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।